राम हरे हरे,
राम राम हरे हरे,
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
28
हरे
कृष्णा 28 जनवरी बहुत ज्यादा वैष्णव महात्माओं का आविर्भाव और तिरुभाव है और बसंत पंचमी है, बसंत ऋतु आ रही है। किसका जन्मदिन है? बसंत पंचमी के दिन कलावती राधिका का प्रकट्य दिन है। तो आप सबका स्वागत है और हरीश जी और परिवार का धन्यवाद कि आज के भागवत के सत्संग को अपने निवास स्थान पे आयोजित किया है। तो पहले भागवत का जो नित्य नेम से श्रवण कर रहे हैं उसका श्रवण करेंगे और फिर थोड़ा आज अभी के सत्संग में थोड़ा सायंकाल को सत्संग में चर्चा करेंगे इसकी, वैष्णव आचार्यों के जीवनी की। तो श्रीमद अपने अब थोड़ा सा ऐसे आ जाए, कोई और आएगा तो उसको बैठ इनके साथ बैठो बैठो आराम से बैठो। पवन को तो उड़ के कहीं भी बैठने में कोई चिंता नहीं, कोई पृथ्वी होती तो कैसे हिलती। पवन को परेशानी नहीं, पृथ्वी के लिए समस्या। श्रीमद् भागवत महापुराण अठारह हजार श्लोकों का ये दिव्य काव्य कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है और कल्प वृक्ष में भी वैदिक साहित्य के निगम कल्पत्रु, निगम कल्पत्रु का निगम का मतलब वेद, जिस तक आसानी से कोई न पहुंच सकता है उसको बोलता है निगम। निगम मतलब जहां तक पहुंचना मुश्किल है और उसको वेद कहते हैं निगम। और कल्पत्रु कल्पतरु, कल्प वृक्ष, तरु का मतलब वृक्ष। तो निगम कल्पत्रु गलितम फलम, उस कल्प वृक्ष का, एक तो वृक्ष और वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। अगर वृक्ष है तो फिर इस वृक्ष की शाखाएं हैं, उसको स्कंद बोलते हैं, वृक्ष की शाखा को स्कंद बोलते हैं। वैसे कोई वृक्ष होगा तो उसकी शाखा को स्कंद पड़े तना, फिर स्कंद उसकी ब्रांचेस हैं, तो 12 स्कंद है भागवत के। पहले तीन श्लोक, पहले स्कंद के पहले अध्याय के तीन श्लोक, उसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगलाचरण इनवोकिंग ऑस्पिशियसनेस, जब भी कोई महात्मा संत आचार्य भगवान के अथवा उसके किसी परम भक्त के निर्देश में आदेश में कोई शास्त्र का कोई वैदिक साहित्य का भाव लेखनी से लिखना चाहता है तो पहले मंगलाचरण लिखता है। किसी भी शास्त्र को आरंभ करने से पहले ऋषि मुनि महात्मा आचार्य मंगलाचरण लिखते हैं और मंगलाचरण के तीन विभाग होते हैं। मंगलाचरण में एक होता है इष्ट देव स्तुति, আর প্রার্থনা। দূসরা হতা বিষয় বস্তু, শাস্ত্র মে কে হ্যাঁ লিখনে যা রাখে সবজেক্ট ম্যাটর কে হ্যাঁ। তীসরা হতা আশীর্বাদ শ্রুতি ফল। जो पहला इष्ट देव प्रार्थना होता है उसका उद्देश्य होता है कि मेरे आराध्य देव की कृपा से इस कार्य को निर्विघ्न में समाप्त कर सकूं। तो पहला श्लोक श्रीमद् भागवत का जन्मादियस्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये इष्ट देव प्रार्थना है व्यास देव के द्वारा। इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण परम सत्य को प्रार्थना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान जो वासुदेव के घर में, सर्वव्यापक भगवान जो वासुदेव के घर में और देवकी के यहां प्रकट हुए थे, सर्वव्यापक वासुदेव का अर्थ होता है सर्वव्यापक, वो सर्वव्यापक होते हुए भी जो वासुदेव के घर में प्रकट हुए हैं उस भगवान को, वो भगवान क्या है? सत्यम परम, वो परम सत्य है, वो परम सत्य है, उसको मैं प्रणाम करता हूं। मैं अकेला नहीं कहते हैं, सत्यम परम धीमहि, व्यासदेव अपने सारे शिष्यों को अथवा भविष्य में आने वाले सारे भागवत रसिकों को गोद में लेकर भगवान को प्रणाम करता है। जैसे हम सब भगवान को प्रार्थना करते हैं, इसका भाव ये है। तो परम सत्य के इस श्लोक में, वैसे परम सत्य का एक होता है प्रिंसिपल और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। परम सत्य का एक मुख्य उसका गुण होता है और दूसरा लक्षण, एक मूल और एक लक्षण। लक्षण मतलब इसके द्वारा, जैसे लक्ष्मण राम का नाम है तो लक्ष्मण का नाम लेने से राम दिखेगा, जो जो राम को लक्षा दे वो लक्ष्मण, ये लक्षण। इसको एक कहते हैं तटस्थ लक्षण और एक मूलभूत लक्षण भगवान का। तो सत्यम परम ये है मुख्य, भगवान का मुख्य जो स्वरूप है सर्व सत्यम परम, वो उसका प्रिंसिपल या मुख्य स्वरूप है। और परम सत्य वो क्या कौन है? वासुदेव। और तटस्थ लक्षण में क्या है? जन्मादियस्य से लेकर बाकी जो भी है इसकी चर्चा करेंगे अभी, आज तो इसको शरीर इसकी भूमिका की बात कर रहे हैं। बाकी जिससे सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जो सारी सृष्टि का पालन करता है और जब समय आता है तो संहार करता है, तो वो उसके तटस्थ लक्षण है, मूल और तटस्थ। तो ये मंगलाचरण में पहले इष्ट देव प्रार्थना। इससे भक्त के जीवन में इस श्लोक को पढ़ते समय एक संकल्प आना चाहिए कि हम प्रतिदिन जो भक्ति करते हैं उसमें अपना इष्ट, हम कृष्ण हमारा इष्ट है ही, लेकिन फिर भी विशेष रूप से जो जैसे हर गोस्वामी को अपना एक ठाकुर है, विग्रह पूजित है, तो ऐसे हर भक्त का कोई एक विशेष आकर्षित विग्रह होता है, वो उसके जीवन का इष्ट होता है। उसका प्रतिदिन सुबह ध्यान प्रार्थना करनी चाहिए कि आज का दिन निर्विघ्न आपकी भक्ति में हमारा लगे। ये हर भक्त के साधन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम सब मंदिरों में जाते हैं, सारे ही मंदिर हमारे हैं, संस्था के हैं, तो प्रभुपाद के हमारा घर ही है, लेकिन किसी एक श्री विग्रह से आपका एक अटैचमेंट होती है, जिसकी पूजा सेवा से आपका जीवन का एक वो आपका प्रतिदिन का, आप कहीं भी हैं तो उसका ध्यान आपका दिन का मंगल आचरण होना चाहिए। जैसे मंदिर में रहने वाले भक्तों के लिए तो मंगल आरती ही मंगलाचरण है। तो ये एक साधन है, ये हर एक को अपने जीवन में एक साधन बनाना चाहिए कि एक पर्सनल, गोस्वामी की शिक्षा है कि हर एक की पर्सनल ड्यूटी थी, रूप गोस्वामी के गोविंद देव जी हैं, कि सनातन गोस्वामी के मदन मोहन है, तो हरेक गोस्वामी ने, आज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का तिरुभाव तिथि है, तिरुभाव है कि आविर्भाव है, तिरुभाव तिथि है, तो राधा गोलोकानंद उनके विशेष पूजित पूजनीय देवता है, देव है, रघुनाथ दास गोस्वामी वैसे तो रसिक अपना प्रयोजन आचार्य होने हुए राधा गोपीनाथ से उनको, वो राधा रानी के विशेष उपासक हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोवर्धन शिला दी थी और गुंज माला दी थी, और उसका संकेत ये था कि जाके वृंदावन में निवास करो, और गुंज माला का मतलब राधा की सेवा करो, वो इन दो का अर्थ उसने ये निकाला था। अपनी पूजित गोवर्धन शिला चैतन्य महाप्रभु को अपनी छाती पे रखते थे गले में, वो प्रसन्न होके रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी, फिर आगे चल के वो विश्वनाथ चक्रवर्ती के नरोत्तम दास ठाकुर के पास वो पूजित रही, फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पातोसी के परंपरा में आए उनके पास रही, और अभी वो शिला गोलोकानंद गोकुलानंद मंदिर में विराजमान है, और कई संकेत है किसी और जगह भी उसके होने का। तो हर एक आचार्य ने इष्ट देव, तो ऐसे हर भक्त का ये प्रतिदिन का साधन होना चाहिए, सुबह उठ के कम से कम अपना भजन शुरू करने से पहले इष्ट देव का प्रार्थना, निर्विघ्न दिन को भक्ति में बनाए रखे, इसके लिए ये प्रैक्टिकल एक एप्लीकेशन जीवन में करनी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर क्या है भागवत का? दूसरा श्लोक मंगलाचरण का सब्जेक्ट मैटर है। वस्तु वास्तवम शिवदम, वैदिक जो शब्द है उसमें वेद्यम वास्तवम वस्तु शिवदम, जो वेदों में वास्तव वस्तु है वो सबके मंगलकारी है, और मैं उस वास्तविक वास्तव वेदों की वस्तु को जो सबके लिए शुभदम है, मंगलकारी है, उसका वर्णन भागवत में करने जा रहा हूं। ये वस्तु का वर्णन दूसरे श्लोक में आता है। किसको ये वस्तु प्राप्त होगी? ये वस्तु क्या है? और किसको हाथ आएगी, अथवा इस वस्तु को कौन ढूंढ पाएगा इस मेरे ग्रंथ में, ये इसका भाव है कि वास्तु तो का पता लग गया। तो तीन चार प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वस्तु किसने दी, क्या इस वस्तु के बाद और कुछ वस्तु प्राप्त करने की आवश्यकता है, किसको प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, ये चार प्रश्न इसमें इसके अंतर्गत आते हैं। ये वस्तु महामुनि कृते, ये महामुनि व्यास देव की कृति है, श्रीमद् भागवत में वस्तु है। वेदों का वास्तविक सार क्या है, वेदांत, और वेदांत का सार क्या है, भागवत। तो वेदों की वास्तव जो मंगलकारी वस्तु है वो भागवत है। किसने इसकी रचना की, महामुनि कृते, महामुनि व्यास ने इसकी रचना की। कब, जब वेद चारों का विभाजन कर चुका था, पुराण उपनिषद लिख चुका था, और असंतुष्ट होते हुए नारद जी की प्रेरणा से भागवत का संकलन किया। और ये अपने आप में परिपूर्ण है, किसी और ग्रंथ में कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं। तो क्या है इस विशेष ग्रंथ में और किसको प्राप्त होगी, निर्मत्सराणाम सताम। सताम का हमने दो तीन दिन पहले चर्चा की थी। सताम कहते हैं सत्य, क्या सत्य का आश्रय लेने वाले अथवा भक्त, सताम भक्त को कहते हैं। और निर्मत्सराणाम का अर्थ क्या है, जिसका हृदय बहुत शुद्ध हो, किसी के प्रति द्वेष न हो। तो पवित्र हृदय वाले, शुद्ध हृदय वाले भक्त इसका रसास्वादन कर सकेंगे, तो दूसरे क्यों नहीं कर सकेंगे। तो इसके अंदर से अथवा भागवत के अंदर से विशेष वेदों के वास्तविक मंगलकारी इस दिव्य, इसको भागवत को कहा है आध्यात्मिक दीप, आध्यात्मिक दीप। और भगवान श्री कृष्ण को भी आध्यात्मिक दीप कहा गया है भागवत में, दूसरे अध्याय में पहले स्कंद में भागवत को आध्यात्मिक दीप कहा गया है, और बारहवें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण को आध्यात्मिक दीप कहा गया है। दीप दीप लैंप, मेरे ख्याल में दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें मेरे ख्याल में है, मेरे विचार में तो जहां तक मेरे को याद आ रहा है। तो इसमें क्यों नहीं सब लोग इसका रसास्वादन कर सकेंगे, क्योंकि इसमें निर्मत, इसमें क्या है, धर्म प्रोजत कैतव, जो कैतव धर्म है, चीटिंग रिलीजन, वो इसमें से निकाल के बाहर कर दिया गया, इसमें है ही नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ है, इसका अर्थ है प्रायः लोग आसानी से कुछ प्रलोभन से संतुष्ट हो जाते हैं। चीटिंग का मतलब, जैसे बच्चे को आप चीटिंग कैसे करते हैं, भाई टॉफी देके चीटिंग कर देते हैं, खिलौना देके चीटिंग करते हैं, करते हैं कि नहीं। वो आपको मांगता है कि आपकी गोद में आना चाहते हैं, आप उसको क्या देते हैं, टॉफी दे दिया, लड्डू दे दिया, खिलौना दे दिया, करते हो कि नहीं। इसको चीटिंग बोलते हैं, क्या कहोगे आप, भाई बच्चा कहता है मैं आपकी गोद में आते हैं, आप क्या करते हो उसको, बोलो ये सच है कि झूठ है। हाँ, कौन कहता है झूठे? हाँ, कौन क्या, कौन बच्ची बोली सच है? ऐसे ही वेदों में भी बहुत प्रलोपन है, स्वर्ग का प्रलोपन है, संसार के सुख का प्रलोपन है। इन चारों को क्या कहते हैं प्रलोपन को, आचार्यों ने इस कैतव धर्म किसको कहा है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। यहां तक के ब्रह्म में लीन तक की इच्छा भी प्रलोपन में मानी गई है। तो भागवत में ये नहीं है। भागवत कैसा शास्त्र है? पांचवा पुरुषार्थ। इनको चार पुरुषार्थ कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जो सताम नहीं है, निर्मत सराणाम सताम नहीं है, जिनका हृदय शुद्ध नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है, वो इन चार चीजों के अंदर ही अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। दुनिया वाले सिर्फ अर्थ में खुश हैं, अर्थ चाहिए, और फिर अर्थ काय के लिए चाहिए, बोला काम के लिए चाहिए। ये तो हुआ दुनिया की बात। थोड़े जो इससे ऊपर अच्छे साधु स्वभाव के हैं, वो कहते अर्थ तो चाहिए लेकिन धर्म के लिए चाहिए, अर्थ चाहिए लेकिन धर्म के लिए चाहिए। अर्थ कमाओ धर्म से, धर्म के लिए। परम धर्म परम धाम, भगवान परम धर्म ही भगवान है, भगवान के लिए। काम ठीक है, संसार में इच्छाएं हैं तो उसको पूरी करो, लेकिन मोक्ष को मत भूलो। ये है साधारण लोग की। ये जितने ज्ञानी हैं अथवा जितना ज्यादातर साधु समाज है, इन चारों चीजों का इच्छुक है। प्रवृत्ति मार्ग वाले धर्म अर्थ काम के इच्छुक हैं, और ज्ञान मार्ग वाले मोक्ष के इच्छुक हैं। लेकिन पांचवा पुरुषार्थ भागवत है, प्रेम, भगवत प्रेम, ये पांचवा पुरुषार्थ है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने लोगों की सामान्य पूजा को चार विभाग में बांटा है। एक भय के कारण पूजा करना, नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा या सच परेशान हो जाएंगे। बहुत से लोग भय से पूजा करते हैं, कहते हैं भगवान से डरना चाहिए। दूसरे नंबर के लोग स्वार्थ से पूजा करते हैं, कुछ मिलेगा इसलिए पूजा करते हैं, ये पूजा करने से ये मिल जाएगा। ऐसे तथाकथित देव देवता तो फिर भी वेदों में हैं, लेकिन ऐसे मंदिर और पूजा कुछ व्यक्तियों की हो रही है जहां सिर्फ मांगने का ही काम है। वो मंदिर सुपरमार्केट है, जो भी चाहो मिल जाएगा। ये सुपरमार्केट की कंसेप्ट इन मंदिरों से आई है कि सब कुछ जब एक ही जगह से मिलता है तो इस जगह सुपरमार्केट भी बनाई जाए। सब इच्छा वाले वहां जाते हैं। भगवान भक्ति भक्ति कुछ नहीं, मैं संकेत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप समझ रहे होंगे कि ऐसे बहुत से मंदिर बन रहे हैं जहां सिर्फ इच्छाओं की रोज चिट्ठी जाती है, और पूजा भी इसलिए करते हैं यहां से हमको फायदा हो। और तीसरा होता है कर्तव्य समझकर। हमारी दादे दादी ने घर में ये रखा है तो चलो इसको रोज अगरबत्ती दिखा देंगे। जो प्रलोपन में भी नहीं आते हैं, भय भी नहीं है, लेकिन अपना कर्तव्य है। और बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें सास के जमाने के लड्डू गोपाल पड़े हैं, तो चलो रहने दीजिए, यहां है, हम भी थोड़ा कभी कभार अगरबत्ती कर दिया करेंगे, अभी है तो हमारा ये कर्तव्य है। ये तो कर्तव्य वाली पूजा। और चौथी जो है वो है प्रेम से करना। वो है प्रेम से करना। नौकर घर में काम करता है ना, वो एक भय से और एक प्रलोभन से, तनख्वाह मिलेगी तो करेगा, नहीं करूंगा तो निकाल देंगे, इसलिए करता है। काम तो वो भी करता है, रोटी वो भी पकाता है, कपड़े वो भी धोता है, लेकिन उसको तनख्वाह मिलेगी तो करेगा और नहीं करेगा तो निकाल देंगे, इसको भय है। मां करती है प्रेम से, प्रेम के कारण मां वही काम करती है, भोजन भी बनाती है, कपड़े भी बच्चे के धोती है, लेकिन उसको न भय है न प्रलोभन है, वो केवल प्रेम के लिए करती है। और जो बाकी सामान्य रिश्तेदार हैं वो कर्तव्य समझ के करते हैं कि भाई हमारा रिश्तेदार है, जरूर हमारी मर्यादा है, हमको करना चाहिए, करते हैं ना भाई। बाकी रिश्तेदार जो भी आते हैं समय पे, वो मर्यादा है भाई, हमारे को जाना है तो ये मर्यादा है। तो अब इन सब सेवाओं में आपको कौन सी सेवा, माँ की सेवा के, सर्वेंट की सेवा के, रिश्तेदारी, कौन सी सेवा उत्तम कहलाएगी? माँ की। ठीक ऐसे ही भगवान का भी संबंध इस तरीके से, भागवत उस प्रेम को प्रकाशित करता है। पांचवा पुरुषार्थ प्रेम है, उसको भागवत प्रकाशित करता है। और किस रूप में? भगवान के प्रेमी भक्तों के रूप में जो गोपियां और गोप आदि हैं, जो अपने सुख के लिए भगवान को याद नहीं करते हैं, भगवान के आनंद के लिए सब कष्ट सहने को तैयार है, ये भागवत की परिकाष्ठा है। प्रेम का प्रकाश कहां भागवत में किया गया है? भगवान के भक्तों का चरित्र। ग्यारह साल के बाद भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से, सॉरी वृंदावन से, नंदगांव से मथुरा अक्रूर जब ले गया तो ग्वाल बाल भी साथ गए थे, नंद बाबा भी साथ गया था। कंस के उद्धार के बाद, उग्रसेन को राजा स्थापन करने के बाद, नंद बाबा ने कहा चलो कन्हैया चले, बाबा अब कंस के मरने के बाद कंस का ससुर मथुरा के ऊपर आक्रमण करेगा, और वृंदावन में अगर वो आएगा तो ब्रजवासियों को बहुत कष्ट होगा, और उधर कोई व्यवस्था है नहीं इस वक्त, इसलिए कुछ वक्त मुझे मथुरा में रहना पड़ेगा, और आप जब याद करेंगे मैं आ जाऊंगा। भोला सा नंद बाबा बहुत सरल है, वापस लौट गया। यशोदा ने नंद को देखा और कन्हैया को वापस साथ में नहीं देखा तो पहली बार कहा अकेले वापस क्यों आए, कन्हैया को नहीं लाए? और कन्हैया के प्रेम में इतना यशोदा भावित हो गई कि अपने मुख से निकाला कि मर तुम मर क्यों नहीं गए, खाली हाथ आए तो अकेले क्यों आए, बेटे को नहीं लाए और फिर तुम काहे के लिए आए, मर गए होते तो। नंद ने कहा मेरा तो प्राण निकल ही जाता, कन्हैया के बगैर मैं जी नहीं सकता हूं। लेकिन कन्हैया ने कहा कि मैं वापस आऊंगा वृंदावन में, और जब आएगा और मेरे को और तेरे को नहीं देखेगा तो उसको दुख होगा, इसलिए मैं जिंदा हूं, अपने दुख के लिए नहीं, वो हमको नहीं देखेगा तो उसको दुख होगा, इसलिए मैं जिंदा हूं। ये है प्रेम की परिभाषा। ये मां का, इस दुनिया में मां का ऐसा प्रेम है, अपने दुख की चिंता नहीं करती है लेकिन बच्चे को किसी हालत में भी सुखी रखना है। तो ये शास्त्र जो है इसके अंदर भगवत प्रेम परम सत्य के लिए हर कठोर तपस्या को सहने के लिए तैयार है, लेकिन भगवत प्रेम मिल जाए तो ये सौदा सस्ता है। तो ये भागवत में परम सत्य का वर्णन है। कैसे प्राप्त होगा? अगर ये वास्तव वस्तु है, महामुनि व्यास उसी की कृति है जिसने वेदांत सार दिया है, वेदांत सूत्र दिए हैं, सब वेद दिए हैं, तो वही व्यक्ति वेदों के अंदर से मुख्य चीज को निकाल सकता है। तो ये प्राप्त कैसे होगी? सुश्रुताम, सुनने की इच्छा से। यज्ञ करने से फल मिलेगा, भागवत केवल सुनने से। सुश्रुताम तत्क्षणात्, कब मिलेगा? मरने के बाद नहीं, तत्क्षणात्, उसी क्षण जब सुनने के लिए हृदय में इच्छा उत्पन्न हो गई, उसी वक्त फल मिलेगा। कहां? हृदय अवरुद्धते, हृदय में आके भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाएंगे, मेहमान बन जाएंगे दिल में भगवान आके। तो ये पांच, ये विश्व वस्तु, उसको प्राप्ति, कौन उसका अधिकारी है, किसने इस वस्तु को निकाला, किसने निकाला? जब व्यास देव ने निकाला है तो वो तो जानता है, वेदों को सब इस बात को मानना पड़ेगा ना, उसी ने तो वेद लिखे हैं, तो उसी के अंदर सार उसको तो निकालना आएगा, दूसरा कब निकाल पाएगा? तो ये सब बातें इस एक श्लोक में उस वस्तु का निर्धार किया, और एक एक लक्षण लिखा है इस वस्तु का कि ये वस्तु आपको प्राप्त होगी तो उसका फल क्या होगा। ताप त्रय उन्मूलनम, पाप नहीं लिखा है। पाप का अर्थ, पाप का फल होता है ताप, पाप का फल ताप है, पाप की वजह से तकलीफ आती है, ताप। तो ये भागवत का श्रवण ताप त्रय उन्मूलनम, पाप और पाप के फल ताप को जड़ से उखाड़ के फेंक देगा। इसी को संक्षेप में भागवत के महात्म में संक्षेप इसी को किया है, बहुत सरल। वहां मंगलाचरण का श्लोक, ये तो है फिलॉसॉफिकल मंगलाचरण, और वहां है सरल साधु भाव का मंगलाचरण। वहां क्या है? वयम कृष्ण नमो, उसका जो लास्ट वर्ड है, हम सब कृष्ण को नमस्कार करते हैं, वो भागवत महात्म्य का श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतुवे ताप त्रय उन्मूलाय कृष्णाय वयम नमो। ये मंगलाचरण का सरल रूप है। वो जो अभी मंगलाचरण हमने पढ़ा मूल ग्रंथ का, जन्मादि अस्य यतः इतरस्तः अन्याद स्वराट, जो ये मंगलाचरण है, इसका सरल रूप, जो सिंपल रूप पद्म पुराण में है, वो है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय, जिसका रूप सच्चिदानंद है, परम सत्य कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। उसका तटस्थ लक्षण क्या है? विश्व उत्पत्ति हेतुवे जन्मादि से, वो विश्व की उत्पत्ति का हेतु है, सर्व कारण कारण। और फल क्या है? तापत्रय उन्मूलाय, तीन प्रकार के पाप और ताप जड़ से निकाल देता है। कौन? कृष्ण। वयम नमो, हम सारे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। तो सच्चिदानंद आनंद रूपाय कृष्ण है, जन्म आदि का वो है। तो ये उसका सूक्ष्म मंगलाचरण का सिंपल रूप है, जो साधारण व्यक्ति उसमें से ढूंढना पड़ेगा, लेकिन इसमें बहुत सरलता से साफ लिखा है, उसी व्यासदेव ने लिखा है। और विशेष रूप से कलयुग में इसका जन सामान्य के कल्याण के लिए रचना तो हुई है द्वापर में, द्वापर के अंत में रचना हुई है। व्यास और नारद का सम्मान तो पहले का है, ऐसे लगता है, लेकिन जन सामान्य के लिए, वैसे कलयुग शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद, कलयुग का समय आ भी गया था, लेकिन जब तक श्री कृष्ण थे तब तक कलयुग इस धरती के ऊपर अपना पैर नहीं फैलाया, उसने पांव नहीं फैलाया। तो कृष्ण व्यास का और जो जो व्यास के आश्रम में संवाद हुआ भागवत का, ये संवाद तो दो ही व्यक्तियों के बीच में है, लेकिन जन सामान्य के लिए जो हम पढ़ रहे थे कल, कि ये ऋषि जब पूछ रहे हैं प्रश्न, तो ये प्रश्न अपन को कल जहां हमने छोड़ा था, कलिमागतम, कलयुग आ चुका है, हम जानते हैं कलयुग आ चुका है, कलयुग आ चुका है तो क्या करेगा? सत्व हरम पुंछाम, कलयुग क्या करेगा अगर आ गया है तो? जो आप 22वें श्लोक में शब्द देखिए, कलिम सत्व हरिम पुंछाम, जन्मदिन है, कोई बात नहीं, नहीं सुनाई देता है तो आगे आ जाइए। हरे कृष्णा, कलयुग आ गया है, उनको कैसे पता लगा कलयुग आ गया है? कलिम सत्व हरम पुंशाम, मानव के अंदर जो अच्छे गुण हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। सत्य, ये तो सत्य दया, ये तो इस तरफ मुंह हो गया इसका, थोड़ा ऊपर भी करना पड़ेगा। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। कलिम सत्व हरम पुंशाम, पुंशाम का मतलब मानव का, सत्व हरम, सत्व का मतलब अच्छे गुण जो है, कौन से अच्छे गुण मानव में होते हैं? सच्चाई है, ईमानदारी है, दया है, तपस्या है, दान आदि है, ऐसा जो वर्णन है, ये सब आस्ते आस्ते लुप्त होने लगेंगे कलयुग में। और प्रभुपाद ने लिखा है ये सब 12वें स्कंद श्रीमद् भागवत में, इन कलयुग के अवगुणों का वर्णन है। तो जब कलयुग आएगा, ये पता लग गया है और अच्छे गुण कम होने लगे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं वैष्णव क्षेत्रे, तो हमारे को ऐसी जगह जाके बैठना चाहिए जहां भगवान का निवास स्थान हो, अथवा भगवान के भक्त जहां रहते हो। इसका अर्थ यह है कि जब तूफान लगने लगे तो आदमी को दरवाजा बंद कर घर में बैठना चाहिए, भाई बाहर अगर तूफान आंधी आए तो क्या करोगे? सुरक्षित जगह पे बैठोगे ना? तो ऐसी स्थिति में कलयुग में भक्तों को समूह में रहना चाहिए, मंदिर बीच में और चारों ओर भक्त रहे, ऐसा वातावरण हो। इसलिए प्रभुपाद का इच्छा था कि वैदिक विलेज स्थापित किए जाए, गांव के बीच में मंदिर होगा और मंदिर के चारों ओर पहले सन्यासी और ब्रह्मचारियों के क्वार्टर होंगे, और फिर वानप्रस्थ के क्वार्टर होंगे और उसके चारों ओर फिर ग्रस्त लोग रहेंगे और उनकी आवश्यकता के सारे कार्य होंगे। ऐसा एक विलेज रोल मॉडल होगा जो हरि क्षेत्र कहलाएगा, वो पूरा विलेज हरि क्षेत्र हो गया। तो ऐसी जगह पे रहने से कलयुग का प्रभाव कम हो जाएगा। आप देखें अभी आपकी स्थिति की, आप रह रहे हैं फ्लैट में, भागवत है, पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाहर निकलेंगे तो चारों ओर से कलयुग का बोलबाला है कि नहीं है? तो आप ऐसे समाज में तो है नहीं, ऐसे किसी वातावरण में है नहीं जहां आप अपने आप को अधिक समय सुरक्षित रख सके। तो ऐसा क्षेत्र चुना है उन्होंने कहा है। तो कलयुग के प्रभाव से रुकने के लिए भक्तों के संग में रहना हरि क्षेत्र के समान है। अधिक से अधिक भक्तों के संग में रहना, इसकी इच्छा तीव्र करती रहनी चाहिए। अब कैसे भी हम बहुत स्ट्रगलिंग स्टेज में हैं, नहीं तो मानो 25-50 भक्त एक जगह रहेंगे तो उनका समूह अच्छा हो जाएगा, उनके लिए ये क्षेत्र अच्छा रहेगा। कहीं आपको मानोगे इसी बिल्डिंग में रहते होते तो आपको गाड़ी का खर्चा, बच्चा आने का जाने का खर्चा, बच्चा कथा के लिए वो और सुविधाएं तो अपने आप हो जाती। मतलब ये तो 50 लोग एक जगह रह रहे हैं तो 10 लोग छुट्टी पे जाएं तो बाकी काम भी चल सकता है। तो ये इसका कहते हैं हरि क्षेत्र में रहने से फायदा है। और तीसरा, ज्यादा समय, दीर्घ काल। इसका मतलब हरि क्षेत्र दीर्घ काल होना चाहिए, बाहर जाना कम होना चाहिए। हमारा उल्टा है, बाहर जाना ज्यादा है और हरि क्षेत्र रहना कम है, और होना चाहिए उल्टा। परसों हम कहीं कह रहे थे पुराने जमाने के आपके हमारे पूर्वज बरसात के 3 महीना काम मेहनत मजदूरी करते थे और 9 महीना बैठ के आराम से तीर्थ यात्राएं करते थे, खाते थे, कोई चिंता नहीं थी। ये तो हमने अपने आंखों से देखे हुए दिन है, कोई पुराने नहीं है, 50 साल पुराने ये ऐसे दिन थे। कुछ नहीं करना था, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना कहीं ले गए सामान, कोई बेच के आए तो फिर 5 महीना खाते थे, फिर दोबारा जाके एक चक्कर लगा के आ जाते थे। और घर में पीछे ये चिंता नहीं होती थी कि खाने की कोई कमी होगी, क्योंकि 3 महीने में इतना होता था कि 12 महीने का राशन घर में होता था। अब आपके बैंक में 50 करोड़ रुपए पड़े हों भले टर्निंग में, लेकिन घर में 50 किलो आटा नहीं है, चावल 50 किलो घर में नहीं है। सच है कि जो है रखोगे कहां? जितना हम 12 महीने का राशन घर में रखते हैं उतना तो आपका सब मिलाकर प्लेट है तो आप खाओगे कहां और रहोगे कहां? इसलिए प्रभुपाद ने बुद्धिमानी से इसको चिड़िया घर कहा कि चिड़िया बेचारी रोज का दाना खा के घर में आके बैठती है, फिर कल दूसरे दिन उड़ेगी, बाहर जाएगी तब खाएगी। लोग तो रहते थे घरों में और ये है चिड़िया घर, तो चिड़िया तो चिड़िया के जमा करके तो नहीं रख सकती ना बेचारी, रोज लाएगी और फिर खाएगी। तो ये चिड़िया घर हमारे जो है ये हमको रोज मजदूरी करने के ऊपर मजबूर करते। तीसरा क्या बोला कलयुग के लिए? कथायाम सक्षणा हरे, हरि की कथा सुनने के लिए हमारे पास सक्षम है, हमारे पास समय पर्याप्त है। आप चिंता मत कीजिए, हम थके हुए ऐसे मत समझिए, हम काम से आए हैं तो कोई बात नहीं, आप कथा कीजिए हम इसको सुनेंगे, आप कथा कीजिए हम काम पे जाएंगे, काम हो ही जाएगा। अब कथा, अब एक शाब एक एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, धात्रा ये जो 22वां श्लोक देख लीजिए, त्वम नः संदर्शितो धात्रा, त्वम नः संदर्शितो धात्रा, दुस्तरम निस्तेते रसताम, कलिम सत्वहरम पुंचाम, कर्ण धार इवारणवम। अब धात्रा किसको बोलते हैं? जो सबका पालन पोषण करता है, भगवान। ये तो भगवान की कृपा है के सूत गोस्वामी आपके समान तुम न संदर्शितो कि आपका मिलन हुआ है। समदर्शन मतलब अच्छी तरह देखे, एक तो होता है देखा, देखा नहीं, आप आपके पास आया, आप भगवत कृपा से यहां पधारे, भगवान ने आज कृपा की है कि सूत आप यहां आए हैं और आप आए उस वक्त है जब कलयुग लोगों का अच्छे गुण तो हरण कर ही रहा है, लेकिन इस कलयुग में भी लोग कुछ कोशिश करते हैं कि इस कलयुग के घोर समुद्र से पार निकलने का प्रयास जो करते हैं उनके लिए आप मानो के नाव लाए हो, कर्णधार हो, कैप्टन हो आप उस। अब इस वक्त ऐसे है कि बाढ़ कहीं आए और घर का सामान हम घर से बाहर निकाल के बैठे हो और कोई नाव लेकर आ जाए, तो ऐसे हमारी स्थिति थी कि कलयुग ने हमारे बिस्तर सबके गोल मिलेंगे, खटिया सबकी खड़ी मिलेगी ऐसी स्थिति हमारी कर दी है। वो मैंने आपको सुनाई थी ये कविता पहले, दाना गिनकर दाल मिलेगी, गेहूं की तो छाल मिलेगी, पानी के मिलेंगे इंजेक्शन आने वाली पीढ़ी को। अभी तो एक किलो दाल तो कम से कम लाते हो ना, पहले एक बोरी दाल आती थी भाई, कम से कम एक दो बोरियां, फिर किलो आने लगी, फिर दुकान पे जाके कहेंगे 25 दाना दाल देना भैया। वो मजबूरी की तपस्या हो जाएगी, लेकिन आज विष्णु प्रिया का आविर्भाव दिवस है, चेतना महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद पतिव्रता उस नारी ने एक चावल, एक माला करके एक चावल निकाल के रखती थी और सुबह से शाम तक जितनी मालाएं उतने चावल वो ही पका के भोग लगा के खाती थी। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और आपको दाल के दाने केवल पका के खाने पड़ेंगे और गेहूं की तो छाल मिलेगी। अब देखो गेहूं से जो आटा बनाते हैं पहले उसमें से सूजी निकालते हैं, अलग भेज देते हैं, फिर मैदा अलग करते हैं, बाकी जो छिलका होता है वो छाल वो आपको आटे के रूप में बड़ी अच्छी तरह से भेज देते हैं आपको खाने के लिए, भूसा। और भूसा खाने वाला आदमी, भूसा कौन खाता है वैसे, किसको बोल खिलाते हैं? बैल को, बैल को। अब इसलिए आदमी बैल जैसा हो जाएगा, उसको अच्छे और बुरे में तमीज नहीं रह जाएगी। बैल की हमने कहा था भाई पढ़ के आना, बैल श्रोता होते हैं, पढ़ा था किसी ने उसमें जाके? चातक तो वो है, वो अच्छे श्रोतों में आता है, अच्छे में चातक है, शुक है, मीन है, और उसमें भ्रूण है, उसमें पहला भ्रूण है जो अच्छे नहीं है, और फिर उष्ट है, फिर बेल है। बेल को अंगूर और खली दो तो अंगूर नहीं खाएगा, खली खाएगा, उसके लिए दोनों बराबर, अंगूर भी बराबर, काजू कतली और घास दो तो दोनों साथ साथ खाएगा। तो बेल जो है उनके लिए, उनके लिए मानो के भागवत, भागवत पुरुषों के संग में भी वैसा ही है जैसे मानो उसके लिए कोई क्या कहा जाए, मायावती की बात हो रही है, ये तो बहुत ऊपर की बात है, हम तो दादा की वर्षी मना रहे हैं वो भी वैसी है और जन्माष्टमी भी उनके लिए वैसी है। ये है बेल की पहचान। तो ये दाना गिनकर दान मिलेगी, गेहूं के पानी के मिलेंगे इंजेक्शन, अभी तो बोतल में मिलता है, पाउच आ गए हैं, अब इंजेक्शन आए, और फिर का खटिया सबकी खड़ी मिलेगी, बिस्तर सबके मिलेंगे गोल, आने वाली पीढ़ी को। ये ऐसी स्थिति, कलयुग की स्थिति को देखकर उस बेचारे ने ऐसा भाव लिखा है, तो ये भी कहेंगे ऐसी स्थिति जब होने लगेगी फिर भी उसमें कुछ लोग, कौन हो लोग? दुष्तरम, वो बहुत मुश्किल है, दुष्तरम मतलब तरना मुश्किल है, निकलना मुश्किल है, फिर भी उसमें निस्तरसता, उसमें कुछ प्रयास करने वाले होंगे जो उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आप कर्णधार हो। कर्णधार का मतलब नाव चलाने वाले, कप्तान हो, कैप्टन हो, अथवा नाव के खवैया हो। और इवावरम, ये जो शब्द है, इवारणम सागर, तो कलयुग दोषों का सागर है। और इसके में आप लाए हो एक नाव, और नाव क्या है? प्रभुपाद ने इसके तात्पर्य के आखिरी लाइन में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण का संदेश भगवत गीता और भागवत ऐसा नाव है जो इस समुद्र से, कलयुग के घोर समुद्र से पार ले जाएगा, अगर कोई सूत गोस्वामी जैसा कर्णधार मिलेगा। यहां तो ऋषि कह रहे हैं नैम शरण्या के, और श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के दूसरे अध्याय में ब्रह्मा शंकर आदि देवता भगवान श्री कृष्ण को गर्भस्थित स्तुति में कह रहे हैं, आपके आने से तब पाद पोते न महत्व कृते न, साधु महात्माओं ने आपके चरणों की नौका बनाई है जिसके ऊपर चढ़ना नहीं पड़ता है, केवल उसका ध्यान करना पड़ता है। आपके आने से जो उन्होंने नौका बनाई है वो ये संसार सागर पार करने के लिए, वहां भगवान के चरण कमल को भवसागर तार करने का शिप बोला गया है। और वहां लिखा है उस शिप पे चढ़ना नहीं है, बस उसका ध्यान करने से पार हो जाओ। और वहां और फिर ये लिखा है, आदमी जो शिप में चढ़ के पार हो गया ना, वो शिप को लेके नहीं गया, उसने वापस किनारे पे छोड़ दिए ताकि दूसरे भी उसके ऊपर चढ़ के पार हो जाए। ये महात्मा बड़े दयालु होते हैं, और प्रभुपाद ने उसको लिखा है वो भक्ति का शिप, भागवत धर्म का शिप, भगवत गीता और भागवत के ऊपर आधारित ये आचार्य ऋषि हमारे लिए छोड़ गए हैं। और कोई सूत गोस्वामी के अथवा उनके परंपरा में कोई ऐसा साधु हमको मिल जाए तो ये साधन हमारे लिए सरल है। तो इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ लीजिए, 22वें श्लोक का, 23वां हमने कल पढ़ ही लिया था, 22वें का अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लीजिए।
हम मानते हैं कि दैवी इच्छा ने हमें मिलाया है जिससे मनुष्यों के तत्व का नाश करने वाले उस कली रूप दुर्लभ के सागर को तरने की इच्छा रखने वाले हम सब आपको नाविक के रूप में ग्रहण कर सके।
अच्छा, हम सब का मतलब सिर्फ 88,000, बाकी दुनिया वाले साधुओं की इच्छा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि कौन लोग वैसे इसको तार कर पाएंगे, ये जो कुछ जिज्ञासु होंगे कम से कम। सबको ये सब तो सोचते भी नहीं है कि इसको निकलना है कि नहीं निकलना है। तो अब आप आ ही गए हैं, हाँ, फिर आगे तात्पर्य को, तात्पर्य में आप पढ़िए विशेष रूप से, दी पीपल एंड सो दिस एज इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज हु वांट टू यूटिलाइज देयर लाइफ फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। एंड सो इसलिए ये कलयुग का समय आत्म साक्षात करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मिला
है, जो लोग जीवन का उपयोग आत्म साक्षात्कार में करना चाहते हैं उनके लिए यह युग अत्यंत दुष्कर है।
अच्छा, फिर द पीपुल, हाँ,
लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने अधिक व्यस्त हैं कि वे आत्म साक्षात्कार को पूरी तरह भूल चुके हैं।
क्या ख्याल है इसके बारे में, ये लाइन के बारे में? लोग इंद्रिय तृप्ति में इतने ग्रस्त हैं कि आत्मा साक्षात्कार के उद्देश्य को ही भूल गए। दूसरी लाइन,
उन्मत्ततावश वे साफ साफ कहते हैं।
उन्मत्ता का मतलब क्या आता है? उन्मत्ता क्या किसको कहते हैं? वो तो बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, उन्मत्त,
पागलपन
कहते हैं उसका अर्थ, आउट ऑफ मैडनेस। हाँ,
उन्मत्ततावश वे साफ साफ कहते हैं, आत्म साक्षात्कार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे नहीं समझते यह संक्षिप्त जीवन आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा का एक क्षण मात्र है।
आत्म साक्षात्कार की विशाल यात्रा, इसका मतलब कई जन्मों से हम कई शरीरों में घूमते फिरते आ रहे हैं। मानव शरीर मिला है जो थोड़े समय के लिए भले हो, लेकिन इसमें आत्म साक्षात्कार करना संभव है। क्या लिखे, कौन सा श्लोक है? ये मानव जन्म, हाँ, दुर्लभम मानव जन्म, भाई थोड़ी देर के लिए मानव जन्म है, क्षण भंगर है, फिर भी इसमें से हम अपने उद्देश्य को आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे आए और यहाँ हमने ये मौका गंवा दिया तो फिर नहीं मिलेगा। लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या जरूरत है आत्म साक्षात्कार, क्या जरूरत है? वो तो इसको बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि बिल्कुल पागल आदमी जैसे होता है। पागल सत्य को सत्य उसको अच्छा कहो तो नहीं समझेगा। एक तो पागल होते हैं, एक बच्चा होता है, उसको कहो कि तुम ऐसे मत करो फिर भी वैसे करेगा। तो एक अनजान है और एक पागल है इस दुनिया में, और एक जानबूझ के नहीं करने वाले। मूर्ख नहीं, उससे भी ज्यादा है। उसको बोला है कि ये नास्तिक है। तो जो मूर्ख हैं, पागल हैं, उनके ऊपर कृपा की जा सकती है, लेकिन जो नास्तिक हैं, उनसे ज्यादा समय भी उनके ऊपर खराब करना ठीक नहीं है। इसमें जो पढ़ना है हमको, और थोड़ा आगे पढ़िए।
इस युग में सारी शिक्षा पद्धति प्रकृति की ओर उन्मुख है, और यदि कोई विद्वान थोड़ा भी सोचे तो वह देखेगा इस युग में सारे बच्चे तथाकथित शिक्षा रूपी बड़े घरों में जानबूझ कर भेजे जा रहे हैं।
अब ये आप इसको अंडरलाइन करके, ये चार लाइन है, इसमें अंडरलाइन कर लीजिए। प्रभुपाद ने ऐसे क्यों कहा है? स्लटर हाउस, पहली लाइन सुन लीजिए। पहली लाइन क्या है? सारी शिक्षा पद्धति आजकल इंद्रिय तृप्ति की ओर ही उन्मुख है, इज गियर टूवर्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। और कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति, थोड़ा भी जिसको बुद्धि है, तो सोचेगा कि ये बच्चे जो हम स्कूल भेज रहे हैं, ये असल में कसाई खाने भेज रहे हैं। ये प्रभुपाद के शब्द हैं। क्यों इसको ऐसे लिखा है? इतना हैवी ये स्टेटमेंट क्यों है? वो इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और इंद्रिय तृप्ति करने वाला आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता है। इसका मतलब मानव जन्म मिलने के बाद भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। तो अब करना क्या चाहिए? अब क्या करना चाहिए? नहीं नहीं हाँ, तो सचेत क्या रहे? सचेत रहने के लिए बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे। बड़े बड़े होशियार हो गए हैं, घर का टैक्स नहीं भर सकते, घर ही मिटा दो। टैक्स में अभी हाउस टैक्स नहीं दे सकते हैं, तो आएंगे तो बोले घर ही नहीं है, मिटा दो घर, बाहर बैठे। ये अच्छा, मेरे घर में हमसे ज्यादा ये एक्सपर्ट है। भागवत पढ़ने की क्या जरूरत है? बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे तो सलाटर उसमें क्या भेजेंगे? मूर्ख कहेंगे।
यदि वे इस घोर कलयुग रूपी समुद्र को पार करना चाहते हैं तो उन्हें नैमिषारण्य के ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, और श्री सूत गोस्वामी या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि को नाव के कर्णधार के रूप में ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत या भगवद्गीता के रूप में श्री कृष्ण का संदेश ही वह नाव है।
तो अब ये सब ठीक है। अब हमारे बच्चों को जो हम स्लटराज भेज रहे हैं, इसका क्या होगा? हमें इसका डर नहीं है। क्यों? जब जन्म से पहले बच्चे को मार सकते हैं, तो पैदा करने के बाद मारने के लिए भेजने में कौन सी परेशानी? ये कॉन्शियसनेस बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर कॉन्शियसनेस। क्या करना चाहिए, ये चिंतन का विषय है, आप चिंतन कीजिए। हाँ जी, नहीं ये वो शब्द टेंशन के लिए लिखा है। क्या लिखा है, निस्तृष्ट, जिनको इच्छा है, ये तो
पार करने की इच्छा करने वालों के लिए।
हरे कृष्णा। तो एक घंटा हो रहा है पूरा। मैं प्रभुपाद ने ये लिखा क्यों है, आप इसके ऊपर चर्चा करके देख लीजिए।